ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् शन्वतां सुकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तनः तदीयन्तस्तहि अभद्राणि वेदनोति सुरित्सतां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत्सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद संख्या 7 अध्याय संख्या 3 श्लोक संख्या 21। मेरे पीछे दोहराइए, ततः ते आशीष सर्व ददामि असुर पुंगव मृतस्य ते हि अमर्तस्य दर्शनम् न अफलम् मम ततस्ताशीष सर्वा ददामि सुरपुङ्गवः अर्थस्य ते हि अमर्तस्य दर्शनं नाफलं मम ततस्ताशीष सर्वा दर्शनं नाफलं मम ततस्ताशीष सर्वा ददामि असुरपुङ्गवः मर्तस्य ते हि मर्तस्य दर्शनं नाफलं मम तथा इसके कारण ते तुमको आशीष वरदान सर्वा सभी ददामि दूंगा असुर पुंगवा हे असुरों में श्रेष्ठ मर्तस्य मरने वाले का ते तुम्हारी तरह ही संदेह अमर्तस्य न मरने वाले का दर्शनम दर्शन न नहीं अफलम बिना फल के मम मेरा। अनुवाद पढ़ता हूँ श्री बहुपाद द्वारा। श्री बहुपाद की मेरे पीछे दोहराए, हे असुरों में श्रेष्ठ इस कारण मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हें सारे वरदान देने के लिए तैयार हूँ। मैं देवताओं के दैवी संसार से संबंधित हूँ, जहाँ लोग मनुष्यों की तरह नहीं मरते। अतः यद्यपि तुम मृत्यु हो किंतु तुमने मेरा दर्शन किया है, अतः यह व्यर्थ नहीं जाएगा। तात्पर्य पढ़ता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य तथा असुर तो मर्त्य हैं किंतु देवता नहीं हैं। जो देवता ब्रह्मा जी के साथ सत्य लोक में रहते हैं वे अपने शरीर पात के समय वैकुंठ लोक को जाते हैं। अतः यद्यपि हिरण्यकश्यपु ने कठिन तपस्या की थी किंतु ब्रह्मा ने भविष्यवाणी की थी कि उसे मरना होगा। वह ना तो अमर हो सकता है ना देवताओं के समान पद पा सकता है। उसने इतने वर्षों तक जो महान तप किया था उससे उसे मृत्यु से सुरक्षा प्राप्त नहीं हो सकती थी। इसकी भविष्यवाणी ब्रह्मा जी द्वारा की जा चुकी थी। हे असुरों में श्रेष्ठ, इस कारण मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हें सारे वरदान देने के लिए तैयार हूँ। मैं देवताओं के दैवी संसार से संबंधित हूँ, जहाँ लोग मनुष्यों की तरह नहीं मरते। अतः यद्यपि तुम मरते हो किंतु तुमने मेरा दर्शन किया है, अतः ये व्यर्थ नहीं जाएगा। इसके पहले के भी कुछ लोग हैं, 1920 19वां श्लोक है। नायतत पूर्वर्षये चक्रुना परिष्यन्ति चय अपरे निरम्बुधारयेत प्राणान का वैदम्य समाशतम। यहाँ तक कि भृगु जैसे साधु पुरुष जो पहले जन्म ले चुके हैं ऐसी कठिन तपस्या नहीं कर सके, ना भविष्य में भी ऐसा कोई कर सकेगा। इन तीनों लोगों में ऐसा कौन होगा जो जन्म लिए बिना 100 दैवी वर्षों तक जीवन धारण कर सके। ऐसा प्रतीत होता है कि यदि योगी पानी की एक बूंद भी न पिए तो योग विधि से अनेकानेक वर्षों तक जीवित रह सकता है, भले ही उसके बाह्य शरीर को चींटियां या कीड़े मकोड़े काट खाएं। 100 दैवी वर्ष कितने होते हैं जी? जोर से बोलो। 36,000? वो क्या हुआ लिखा गया? समय का प्रमाण मतलब माप क्या है, समय कैसे नापा जाता है? समय जो है काल, टाइम जो है उसका मेजरमेंट क्या है, कैसे टाइम का मेजरमेंट होता है? देवताओं का एक दिन हमारा एक साल। एक दिन का मतलब क्या है? 12 hours और 24 hours? चलिए थोड़ी 5 मिनट इस पे चर्चा करते हैं कि डिवीजन ऑफ टाइम। शास्त्र के अंदर, विष्णु पुराण के अंदर जो है काल का क्या सिस्टम दिया है, काल का विभाजन कैसे किया है, टाइम का मेजरमेंट कैसे करते हैं। आपके पास टाइम के मेजरमेंट का सबसे छोटा जो माप है वो क्या है? आज की तारीख में जो चल रहे हैं सेकेंड, ऐसे भी जाता ऐसे ये किया तो कितने सेकेंड हो गए? 1, 2, 3 सेकेंड निकल जाते। विष्णु पुराण जो है शास्त्र के अंदर काल का जो विभाजन किया गया है उसमें दो परमाणु मिलके एक अणु बनता है, 3 अणु से एक त्रसरेणु बनता है, 3 त्रसरेणु से एक त्रुटिका बनती है, 100 त्रुटिका से एक वेधा बनती है, 3 वेधा से एक लव बनता है, 3 लव से एक निमेश बनता है, 3 निमेश से एक क्षण बनता है। क्षण के पहले कितना शार्प डिवीजन है आप समझिए। 5 क्षण की एक काष्ठा बनती है, 15 काष्ठा की एक लघु बनती है, 15 लघु की एक नाड़िका बनती है, 6 नाड़िका का एक प्रहर बनता है। 6 नाड़िका मिलके एक प्रहर को बनाते हैं। 8 प्रहर से एक दिन और रात बनता है और 15 दिन और रात से एक पक्ष बनता है, 2 पक्ष से एक महीना बनता है, 2 महीनों से एक ऋतु बनती है, 6 महीनों से एक आयन बनता है, आयन मतलब उत्तरायन और दक्षिणायन, और 2 आयन से एक साल बनता है, एक वर्ष बनता है। ये जो हमारा एक वर्ष है ये देवताओं का एक दिन और रात के बराबर है, इट इज 24 hours। अब इसके बाद जो है चर्चा आप सबको पता है कलयुग का क्या है, कलयुग कितना बड़ा है, 4,32,000 द्वापर, इससे दुगना 8,64,000, त्रेता इससे 3 गुना कितना हुआ 12,96,000, और सतयुग इससे 4 गुना 17,28,000। तो चारों युग बन के एक चतुर्युगी बना, साइज हुआ 43,20,000 वर्ष, एक चतुर्युगी। और 71 से ही 1/14 चतुर्युगी जब मिलते हैं तब जो है एक मनु की लाइफ होती है, एक मनु की लाइफ। 1,000 चतुर्युगी ब्रह्मा जी का एक दिन, 1,000 चतुर्युगी ब्रह्मा जी की एक रात, और ब्रह्मा जी का जो पूरा दिन है जिसको अहोरात्र कहते हैं वो 24 आवर्स का, वह 2,000 चतुर्युगी का होता है। इतनी लंबी आयु है और भी है अभी कि यहीं तक समाप्त है? एक महीना, एक साल और 100 साल, इतनी लंबी आयु ब्रह्मा जी ने प्राप्त करी है। और इसके बाद क्या होता है, 100 साल की आयु के बाद क्या होता है? महाप्रलय। और एक दिन के बाद, एक दिन के बाद क्या होता है? प्रलय। तो उस प्रलय में क्या क्या चीजें जाती हैं? ब्रह्मा जी की जब एक दिन होता है समाप्त, उस प्रलय के अंदर जो है क्या कहलाता है? ब्रह्मा जी का एक दिन जो है कहलाती है नैमित्तिक प्रलय। छोटा सा वर्णन करता हूं 2 मिनट के अंदर। एक सहस्त्र चतुर्युग बीतने पर जब एक दिन पूरा होता है, एक दिन पूरा होता है ना, तब पृथ्वी जो है क्षीण प्राय हो जाती है, मतलब बिल्कुल एकदम नीली ढाली मुर्दा स्थिति में पृथ्वी जो है पोजिशन पहुंच जाती है। तब 100 साल तक जो है अति घोर अनावृष्टि होती है। जो जीव अल्प शक्ति वाले होते हैं सब अनावृष्टि से पीड़ित होकर सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। तब भगवान विष्णु जो है उस संसार का क्षय करने के लिए संपूर्ण प्रजा को अपने में लीन करने का प्रयत्न करते हैं। उसका तरीका ये होता है कि भगवान जो है सूर्य की 7 किरणों में स्थित होकर संपूर्ण जल को सोख लेते हैं। जल अनावृष्टि जल है ना, जल ही जल है चारों तरफ। जल समाप्त होगा तो कैसे होगा कि पृथ्वी के जल को सोख लिया, भूमंडल को शुष्क कर दिया, समुद्र में नदियों में पर्वती सरताओं में स्रोतों में विभिन्न पतालों में जितना जल है सबका सब सुखा दिया जाता है, कहीं जल की एक बूंद भी नहीं रहती। तब जल पान से जो पुष्टि मिलती है उससे जो है 7 सूर्य की रश्मियां जो है 7 सूर्य बन जाती है, और जो है 7 सूर्य जो है पूर्ण संपूर्ण त्रिलोकी को भस्म कर देते हैं। तो त्रिलोकी क्या है, कौन से 3 लोग हैं जिनको भस्म किया जा रहा है? ऊर्ध्व, मध्य और अधो। पृथ्वी के ऊपर के जो प्लैनेट्स हैं वो ऊर्ध्व प्लैनेट्स कहलाते हैं, सत्य लोग, तपो लोग, जन लोग, महर लोग, स्वर्ग लोग, भूर लोग, भू लोग। बीच वाला आ गया अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, असातल, पाताल, ये सारे नीचे वाले आ गए। अब इसके बाद कह रहे हैं कि वो जो सूर्य से त्रिलोकी जो है दग्ध हो जाती है, ईरस हो जाती है, उस समय सारे वृक्ष सारे जल आदि जो है दग्ध हो जाने से पृथ्वी जो है कछुए की पीठ के समान कठोर हो जाती है, सब कुछ जो है समाप्त हो गया है। तब भगवान जो है श्री हरि काल रुद्र काल अग्नि रुद्र रूप से शेषनाग के मुख से प्रकट होते हैं, जो सबसे नीचे 14 ब्रह्मांडों को 14 के 14 भुवनों को धारण किए। तब ये महान अग्नि समस्त पातालों को जलाकर पृथ्वी पर पहुंचता है और संपूर्ण भूतल को भस्म कर डालता है। तब अग्नि भूवर लोक और स्वर्ग लोक को जला डालता है। तब ये वहीं पे चक्कर काटने लगता है। अब परलोक की चाहना करने वाले जो जीव हैं, भूवर लोक स्वर्ग लोक में रहने वाले जो देवतागण हैं, सारे के सारे अग्नि ज्वाला से दुखी होकर संतप्त होकर ऊपर महर लोक को चले जाते, ऊपर प्रवेश कर जाते। देखो अब वो जो चीजें हैं वो बच जाती है, महर लोक, ज्ञान लोक, तपो लोक, सत्य लोक, दे आर सेफ्ट। अब जो है भगवान विष्णु के से जो है निकलते हैं मेघ, अग्नि है ना, अब उनको जो है शांत करना। समर्थक नामक मेघ जो है घोर मेघ आकाश में उठते हैं और उन मेघों से जो है हर जगह पानी 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 हो जाता है। अब इसके बाद जो है जब संपूर्ण जगह जल में डूब जाता है तब भूवर लोक तथा उसके ऊपर के लोगों को जलमग्न कर देते हैं, संसार अंधकारमय हो जाता है और वो मेघ जो है 100 वर्ष तक बरसते रहते हैं, तो जल प्रलय कहते हैं। ये ब्रह्मा जी के एक दिन के बाद है और ये तपस्या किसके लिए कर रहा है, किसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे आप वर दीजिए। वर में क्या मांग रहा है कि मुझे अमर होना है, अमर। एक समस्या है, जब भी कोई जीव तपस्या करता है और विधि पूर्वक तपस्या करता है तो उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर जिसके प्रति तपस्या की जा रही है वो उसको वर देने के लिए बाध्य है, उसको वर देना ही पड़ेगा, ऐसा जो है रूल है। महाभारत पढ़ते हैं, पहले भी चर्चा कर चुका हूँ फिर रिपीट करता हूँ, तो महाभारत के अंदर जो है राजा द्रौपदी ने शिवजी के प्रति तपस्या करी। किस लिए करी, क्या चाहता था वो, एक पुत्र प्राप्त करना चाहता था। तपस्या से प्रसन्न हुए, शिवजी प्रकट हुए और प्रकट होते ही कहते हैं राजा द्रुपद तुम्हें पुत्री प्राप्त हो। तो राजा द्रुपद अड़ गए। रूल ये नहीं है, रूल ये है कि आप प्रकट हुए हो तो आपको मुझसे पूछना है कि मुझे क्या चाहिए और जो चाहिए वो देना है क्योंकि तो मैंने आपको प्रसन्न कर दिया पर आपने अपनी मर्जी कर दी यहां पर कि जब तुझे पुत्री प्राप्त हो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं, मुझे एक्सेप्टेड नहीं है, प्रॉब्लम आप इसको बदलिए। आप शिव जी फंस गए, भाई मैं तो आशुतोष बड़ी आसानी से वरदान देता और मैंने ज्यादा ही आसानी से दे दिया, मैंने इससे पूछा नहीं, मुझे इससे पूछना चाहिए था। बोले अच्छा ये बताओ तुम्हें क्या चाहिए। बोले मैंने तो पुत्र प्राप्ति की कामना हेतु आपकी आपके प्रति तपस्या करी थी और आपने मुझे पुत्री दे दी। तब शिव जी ने कहा चलो लेट अस कॉम्प्रोमाइज, मैं एक समझौता करता हूँ, तुम्हें पुत्री ही प्राप्त होगी, वर जो दिया जा चुका है उसको वापस नहीं लिया जा सकता, परंतु ये मेरी कमिटमेंट है, मेरा प्रॉमिस है, मेरा वर है कि यही पुत्री समय पाकर पुत्र बन जाएगी। अभी बड़ा कंफ्यूजन है कि पुत्री पुत्र कैसे बन जाएगी, शी ही कैसे हो जाएगा, चक्कर हो गया ना। पर चूंकि शिवजी ने कहा है इसलिए झूठा हो नहीं सकता। अब होना है उसके लिए लीला क्या होगी, सिस्टम क्या होगा, प्रोसीजर क्या बनेगा, एक सेकेंडरी इशू है। परंतु वरदान के अंदर जो है मॉडिफिकेशन करी गई, जो ओरिजिनल वरदान दिया जा चुका था उसको एकदम पलट के चेंज नहीं किया गया, उसी को कॉन्टिन्यूएशन जैसे होता है ना, हम लोग साइंस पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि ये ज्योमेट्री में थ्योरम है और ये उसकी कॉरोलरी है, उसके एडिशनल है, समथिंग समथिंग लाइक दिस। तो एक एडिशनल एलिमेंट जोड़ दिया गया कि तुम्हारी यही पुत्री जो है समय पाकर पुत्र बन जाएगी। अब राजा द्रुपद को भगवान शिव पे विश्वास है, कहने लगे कि उनकी बात झूठी नहीं हो सकती, इसलिए मैं इस पुत्री का लालन पालन, इसकी शिक्षा दीक्षा जो है सारी की सारी एक पुत्र के समान करूँगा। तो उन्होंने सारा कुछ जो है उसको पुत्र के समान पाला, पुत्र के समान बड़ा किया, धनुर्विद्या, राज विद्या, सारी की सारी विद्याएं, नीति सब विद्याएं सिखाई। अब अभी तक जो है वो पुत्री पुत्र नहीं बनी। फिर मन में बात आती है कि बनेगी जरूर, तो इसका विवाह जो है किसी लड़के से करने के बजाय किसी लड़की से किया जाए तो समय पाकर ये पुत्र बन जाएगा तो मामला जम जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने राजा हिरण्यवर्मा हैं उनकी पुत्री के साथ उसका विवाह कर दिया। अरे दो स्त्रियां जब अंतःपुर में मिल रही हैं तो बलवा हो गया, तो लड़की है, मेरी शादी लड़की से कर दी गई। समझाया कि मेरे को ऐसे ऐसे वरदान मिला था, ये जो है पुत्र बन जाएगा, आप चिंता नहीं करो। लड़की नहीं मानी, उसने ने पिता को शिकायत करी, पिता ने जो है इनके ऊपर हमला कर दिया। जब हमला हो जाता है तो लड़की जो है दुखी होकर घर छोड़ के चली जाती है कि मेरे कारण मेरे पिता के ऊपर ये कष्ट आया। जब वो घर छोड़ के चली गई है तो जंगल में बैठी है, उदास परेशान, संध्या का वक्त है, एक यक्ष और यक्षों का जो उस प्रदेश का राजा है वो वहाँ पर आता है, नाम है स्थूनाकर्ण। वो उससे कहता है कि तुम इतनी उदास बैठी हो, दुखी हो, रो रही हो, क्या कारण है? अकेली स्त्री जंगल में। तो बताती है कि मैं राजा द्रुपद की पुत्री हूँ, मेरा नाम जो है ऐसे ऐसे शिखंडी है और मैं अपना इस तरह मेरे पिता के ऊपर जो है राजा हिरण्यवर्मा ने जो है आक्रमण कर दिया है क्योंकि उनकी पुत्री से मेरा विवाह कर दिया गया था और मेरे पिता ये कहते हैं कि मुझको शिव जी का वरदान है कि मैं स्त्री होने के बावजूद समय पाकर पुरुष बन जाऊँ। तो स्थूनाकर्ण यक्ष जो है करुणावश दयावश कहता है अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ, तुम्हारे पिता को इस आक्रमण से बचाता हूँ। तरीका यह है कि मैं अपना पुरुषत्व तुमको उधार देता हूँ, एक साल के बाद तुमसे वापस ले लूँगा, तुम जाओ पुरुष बन के अपने महल में। ट्रांसफर हुआ, अब आज की डेट में आप सर्जिकल कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, जो भी उस वक्त प्रोसीजर थे वैदिक काल में। लड़की जो है वापस जब पहुंचती है तो अपने अंतापुर में जाती है, स्त्री से मिलती है तो पता लगता है कि जो पुरुष था पता नहीं कैसे गलतफहमी हो गई थी, कंफ्यूजन प्रिवेल्स। अब राजा हिरण्यवर्मा को संदेश जाता है उसकी पुत्री के द्वारा कि मेरे से गलती हो गई थी, ऐसा कुछ नहीं है, ये पुरुष ही है। आक्रमण वापस हो जाता है, एक साल बीतता है। अब इस एक साल में कथा क्या चलती है कि कुबेरों जो कुबेर हैं जो यक्षों के राजा हैं वो स्थूनाकर्ण के यहाँ आते हैं और आके उनका अपादर मान सत्कार सब कुछ होता है, पर तो स्थूनाकर्ण उनके पास नहीं फटकता, वो हमें छुपा रहता है। जब वो पता करते हैं कि स्थूनाकर्ण जो है मुझे प्रणाम करने नहीं आया है, मेरे पास नहीं आ रहा है, मेरे सामने नहीं आ रहा है, तो उनको उत्तर मिलता है कि इस वक्त जो है स्त्री वेश धारण किए, उन्होंने अस्तित्व ग्रहण कर लिया, आपसे लज्जा कर रहे हैं, आप पुरुष हैं वो स्त्री हैं, आपसे लज्जा कर रहे हैं। तो सारी स्टोरी पता करते हैं तो बाद में स्थूनाकर्ण से कहते हैं कि तुमने गलत कार्य किया है, मुझसे पूछे बगैर तुम आजीवन स्त्री ही बने रहोगे, कभी पुरुषत्व स्वीकार नहीं कर पाओगे। तो एक साल के बाद जो है जब वो स्त्री जो है जो शिखंडनी जो है शिखंडी बन गई है, अपना अस्तित्व वापस करने आती, पुरुषत्व लेने आती, उसको कहती स्थूनाकर्ण से कि अपना पुरुषत्व ले लीजिए, मेरा अस्तित्व मुझे वापस कर दीजिए, तो वो कहते हैं कि मैं तो कर नहीं सकता क्योंकि मैं श्राप ग्रसित हूँ, अब तुम ऐसे ही पुरुष हो। तो ये बात बताई जा रही है कि देवता लोग जो है जब किसी को वर देते हैं या उनके समक्ष प्रकट होते हैं तो वर देने के लिए बाध्य हैं, परंतु यहाँ ब्रह्मा जी जो हैं प्रकट होने के बावजूद भी वर देने के मामले में थोड़े से डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं, क्योंकि जैसा वर मांगा जा रहा है वैसा वर ब्रह्मा जी के अधिकार में नहीं है, ये कैनॉट बी, उनके पास उस वर को देने की पावर्स नहीं। 20वें श्लोक में कहते हैं व्यवसायेन तेन दुष्करेन मनस्विना तपोनिष्ठेन भवता जीता अहम दिति नंदना। हे दिति पुत्र, तुमने अपने महान संकल्प से तथा अपनी तपस्या से भी कर दिखाया है जो बड़े बड़े साधु पुरुषों के लिए भी दुष्कर है, इस तरह तुमने मुझे निश्चय ही जीत लिया है। तो यहाँ जो है शब्द लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, जिता पराभूतम अशस्तम जय जिता विदा उच्चते बुद्ध है। यदि कोई किसी के वश में हो जाता है या दूसरे द्वारा पराजित हो जाता है तो वह चित कहलाता है। हिरण्यकश्यपु की तपस्या इतनी महान तथा अद्भुत थी कि ब्रह्मा जी भी अपने को उससे पराजित हुआ स्वीकार करना पड़ा। ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यपु की तपस्या से पराजित है, इसका क्या अर्थ है? पराजित होना इसका क्या अर्थ है? युद्ध के अंदर आप आक्रमणकर्ता से पराजित हो गए, इसका क्या मतलब हुआ?
उससे
ये तो लिखा है, वश में आ जाना। वश में आने का मतलब क्या है? आप मेरे वश में हैं, बोलूंगा खड़े हो जाओ तो खड़े हो, बोलूंगा बैठ जाओ तो वहां धूप में खड़े हो जाओ दो घंटे तक, हिलना नहीं तो हिलोगे नहीं क्योंकि आप मेरे वश में। यू विल डू एज आई से, यू विल फॉलो व्हाट आई से, वाह वही करेंगे जो मैं आपसे कहूंगा क्योंकि इस वक्त आप मेरे कब्जे। चीरहरण के समय जब द्रौपदी ने अपने पतियों की ओर देखा, गुहार लगाई कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम्हारे सामने नग्न करने का प्रयास किया जा रहा है तो मेरी रक्षा करो, तो पांचों पांडवों ने, पांचों पतियों ने क्या उत्तर दिया कि अब हम कौरवों के वश में हैं, हम तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते। We will do as they say, जैसा वो चाहेंगे वैसा हम करेंगे, हम अपनी मर्जी से, हमारी अपनी मर्जी कुछ नहीं रही है, हमारी अपनी चॉइस नहीं है। अब चॉइस किसकी है? जिसके हम वश में हैं, हम उसके अंतर्गत आ गए हैं, उसके कंट्रोल में आ गए हैं। तो पांचों पांडवों ने द्रौपदी को हेल्प करने से रिफ्यूज कर दिया, रिफ्यूज्ड। उसने जो है द्रोणाचार्य से, कृपाचार्य से गुहार लगाई कि आप गुरुजन हैं, आपके सामने आपके शिष्यों की पुत्र वधु को नग्न किया जा रहा है, मैं आपके पुत्र वधु के समान हूं, वो आपको मुझे नग्न किया जा रहा है तो मेरी रक्षा करें। तो द्रोणाचार्य कृपाचार्य ने क्या उत्तर दिया कि हम लोगों ने कौरवों की सेवा स्वीकार की हुई है और सेवक जो है स्वामी के वश में होता है, इसलिए हम इनकी इच्छा के, इनकी डिजायर के अगेंस्ट नहीं जा सकते, इसे तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। पिता में से प्रार्थना करी तो पिता में ने क्या कहा कि मैंने कमिटमेंट किया था, मैंने प्रतिज्ञा ली थी, मैंने प्रण किया था कि उस प्रण के अंदर ये स्पष्ट था कि मैं कौरव राज्य के प्रति हमेशा वफादार रहूंगा, कौरव राज्य के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा। तो मैं इस वक्त जो है उस प्रतिज्ञा से प्रतिबद्ध हूं, मैं उस प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ सकता, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। तो वश में होने का मतलब यह है कि अब उस वक्त भगवान आपको मुक्ति आसानी से देते हैं कि भक्ति आसानी से देते हैं, विच इज इजी टू गिव। क्यों मुक्ति देनी है? आसान काम है क्या? आपको इस भौतिक संसार के बाद 14 भुवनों से निकाल के आपको सीधा गोलोक वृंदावन ले जाना या वैकुंठ ले जाना, इज इट ए इजी जॉब? इतना मुश्किल काम है? आपकी बहुत सारी बातें आड़ी आती हैं, परंतु भगवान कहते हैं अगर तुम सही रास्ते पे चलते हो, मेरे बताए मार्ग पे चलते हो, मेरे आदेश के अनुसार चलते हो, मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, मेरे प्रति श्रद्धा रखते हो, तो मैं तुम्हें सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कर दूंगा और अपने धाम ले जाऊंगा। पर भक्ति आसानी से देते हैं क्या? भक्ति आसानी से देते हैं क्या? क्यों नहीं देते? भगवान कहते हैं मैं भक्त के वश में हो जाऊंगा। वश में होने का क्या मतलब है? वश में होने का मतलब क्या? भक्त पुंडरीक को भगवान ने दर्शन दिए, कहां पर? चंद्रभागा नदी के किनारे पंडरपुर। माता पिता की सेवा कर रहा था भगवान, वहां पे दिंडी वन के अंदर रुक्मिणी जी को मनाने के लिए आए थे, तो भक्त पुंडरीक से भी मिलने का प्रोग्राम बना लिया कि मेरा भक्त है, इससे मैं इसको दर्शन देता चलूं, इससे मिलता चलूं। तो भक्त ने क्या किया, ईंट फेंकी, इस पे खड़े हो जाओ। और भगवान ऐसे खड़े, ऐसे खड़े, जब उसने माता पिता की सेवा समाप्त कर ली, उसके बाद भगवान से मुखातिब हुआ, उन्होंने का दर्शन किए, प्रणाम किया, सब कुछ किया, तो भगवान ने कहा अच्छा मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तो क्या वर मांगा? मोक्ष नहीं मांगा, मुक्ति नहीं मांगी, महल नहीं मांगा, क्या मांगा? बोले कि जिस तरह आपने यहां पर मेरे को दर्शन दिए हैं, मैं चाहता हूं इस कलयुग के अंदर आप इसी प्रकार से अपने भक्तों को दर्शन देते रहे। क्या मांगा? कि भक्तों को दर्शन किस तरह? ऐसे खड़े और ईंट पे, भगवान उसकी ईंट पे खड़े हैं, तो ईंट को जो है मराठी में बिट कहा जाता है, बिट। तो भगवान को विठ्ठल जी, विठोबा के नाम से भी पुकारा जाता। तो देखें कि भगवान भक्त के वश में कब आते हैं? जब आप भक्ति में परिपूर्ण हो जाते हैं। भगवान क्या कहते हैं? तस्यायम सुलभ पार्था नित्य युक्त योगिना, कि तुम पुकारोगे और मैं चला आऊंगा। शर्त केवल एक है, अनन्य चेता सत्यम यो, तुम्हारी चिंतन में, तुम्हारी चेतना में, तुम्हारे स्मरण में मेरे सिवाय और कोई नहीं होना चाहिए। यहां बात हो रही है देवताओं की, कि देवता लोग जो हैं उनके लिए ये कंपल्शन है कि जैसा वर मांगा जाएगा वैसा मर देंगे, उसके बिना कोई चारा नहीं है। परंतु यहां तो ब्रह्मा जी फंस गए हैं, क्या उसको जो है अमर होने का वरदान दे सकते हैं? या हिरण्यकश्यप को उन्होंने अमरत्व का वरदान दिया क्या? क्या उन्होंने कहा कि ठीक है तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, जाओ? दिया नहीं? दिया नहीं दिया, क्योंकि उनके हाथ में नहीं है। तो यहां वो यही कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार सारे वरदान देने को तैयार हूं, एग्रीड। मैं देवताओं के दैवी संसार से संबंधित हूं, सत्यलोक से आया हूं मैं, जहां लोग मनुष्यों की तरह नहीं मरते। अतः यदि तुम मृत्य हो और तुमने मेरा दर्शन किया है तो ये व्रत नहीं जाएगा। हाँ, तुम्हें एक ऐसा वरदान मिल जाएगा जिससे तुम्हारी आयु थोड़ी सी प्रोलॉन्ग हो जाएगी। तुम अपनी चॉइस दो, तुम क्या चाहते हो। आगे जाके बातें आएंगी। हिरण्यकश्यप जो है अपनी चॉइस देता है कि मुझे किस तरह से मृत्यु से बचना है। परंतु यहाँ जो है ये बात हो रही है कि मृत्यु से कोई भी नहीं बच सकता, नोबडी कैन बी सेव्ड। मनुष्य तो असुर तो मरते हैं किंतु देवता नहीं है। जो देवता ब्रह्मा जी के साथ सत्य लोक में रहते हैं वो ऊपर वैकुंठ में चले जाते हैं, पर जो नीचे वाले लोकों में हैं उनको लौटकर पृथ्वी पर आना पड़ता है। तो यहाँ चर्चा हो रही है कि तो उसने इतने वर्षों तक जो महान तप किया था उससे उसे मृत्यु से सुरक्षा प्राप्त नहीं हो सकती थी, इतनी तपस्या करने के बाद भी। एक बात आपको बताते हैं कि एक बार राज ऋषि विश्वामित्र जी और ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी में थोड़ी बहस हो गई कि सत्संग बड़ा है कि तपस्या बड़ी, कौन बड़ा? तो उन्होंने कहा कि इसका फैसला कराना है तो फैसला किससे कराया जाए। तो दोनों ने मिलके जो है ये डिसीजन लिया कि हमें जो है शेषनाग जी पे जाना चाहिए फैसला कराने के लिए। शेषनाग जी जो हैं वो हमारा फैसला करेंगे। तो दोनों जो है शेषनाग जी के पास पहुंचे और उनसे जाके रिक्वेस्ट करी कि हम आपके पास प्रार्थना लेके आए हैं, हम में एक बहस चल रही है कि तपस्या ज़्यादा बढ़िया है या सत्संग ज़्यादा बढ़िया है, दोनों में से कौन ज़्यादा पावरफुल है, इसका फैसला आप करिए। मेरे पास फुर्सत नहीं है, आई हैव नो टाइम। ब्रह्मांडों को धारण किए कि ये मैं थक गया हूं, अब तुम अपना फैसला कराने चले आए हो, लीला हो रही है, मैं नहीं तुम्हारी हेल्प कर सकता, आई एम सॉरी। नहीं नहीं नहीं, दोनों ने फिर खूब दंडवत किए, खूब प्रणाम किया कि आप हमारी सहायता करिए। अच्छा चलो ठीक है, मैं कोशिश करता हूं, मेरी तुम्हारे से एक शर्त है, तुम कुछ ऐसा उपाय करो कि जो 14 भुवन है इनका भार मेरे से हट जाए कुछ क्षणों के लिए, कुछ पल के लिए, कुछ मोमेंट्स के लिए, तो फिर मैं जो है तुम्हारा उत्तर दे पाऊंगा। सांस सा मुझे आ जाएगा, तबीयत मेरी थोड़ी सी खिलखिला जाएगी, फिर मैं तुम्हारा उत्तर दूंगा। तो विश्वामित्र जी कहते हैं नो प्रॉब्लम, मैं जल लिया हाथ में, मैं अपने 10,000 वर्षों का तप अर्पित करता हूं ये ब्रह्मांड आपके फन से ऊपर उठ जाए। नहीं उठे, पड़े रहे वहीं। अब शेषनाग जी ने वशिष्ठ जी की तरफ देखा, तुम बताओ। वशिष्ठ जी ने जल लिया, बोले मैं अपने एक क्षण का सत्संग, एक क्षण सत्संग जो है आपके प्रति अर्पित करता हूं, ये ब्रह्मांड जो है आपके फन से ऊपर उठ जाए। अब ब्रह्मांड ऊपर उठ गए, शेषनाग जी का फन रिलीव हो गया। कुछ क्षण बीते, पल बीते, मिनट बीते, समय बीता, तो राज ऋषि विश्वामित्र जी कहते हैं, भगवान जवाब दीजिए ना, मैं आपके उत्तर का प्रतीक्षा कर रहा हूं, आप मुझे उत्तर दीजिए कि सत्संग बढ़िया है या तपस्या बढ़िया है। तो शेषनाग जी कहते हैं, अब भी समझ में नहीं आया, अब भी पल्ले नहीं पड़ा कि कौन बढ़िया है। देखो, सत्संग का नाम लेते ही प्रमाण ऊपर उठ गए। तो तपस्या का एक रोल है प्योरिफिकेशन करने के लिए, प्योरिटीज के लिए ऑस्टेरिटीज करते हैं हम लोग, परंतु उससे बड़ा रोल किसका है? सत्संग। संकीर्तन करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए कलयुग के अंदर चैतन्य महाप्रभु ने सबसे ज्यादा संस्तुति तपस्या की करी है या संकीर्तन की करी है, दैट इज द रीजन। अब 5 मिनट के लिए चर्चा है, ललिता जी का है आज, है कि नहीं? लिखा नहीं यहां, तो पूछा है ना, तो थोड़ी सी 2 मिनट की चर्चा है। रूप गोस्वामी जो है एक्सप्लेन करते हैं कि 8 मेन गोपियां जो हैं, 8 जो मुख्य गोपियां हैं, राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका के अंदर जो है उल्लेख आता है, ये 8 गोपियों में से राधा जी की मेन सखी है। राधा जी से ये 27 दिन बड़ी, 27 days older, और जो 8 मेन गोपियां हैं उनमें ये लीडर हैं और बेस्ट हैं। ये राधा रानी की कांस्टेंट, मतलब लगातार कंपेनियन हैं, साथी हैं, और उनको फॉलो करती है, इस फॉलोअर्स हैं राधा रानी। उनकी अति प्रिय मित्र हैं, पर इनका जो स्वभाव है वो थोड़ा सा कैसा है, हॉट टेम्पर्ड, मान है इसके अंदर, गुस्सा है, हल्का सा क्रोध है। रंग इनका जो है ब्राइट येलो, जैसे कि पिघले हुए सोने के समान। कपड़े किस रंग के पहनती ज्यादातर? पिकॉक, ब्लू और पिकॉक में थोड़ा सा फर्क है, ब्लू नेवी ब्लू भी हो जाता है, लाइट ब्लू भी हो जाता है, पिकॉक मतलब आसमानी रंग, आसमानी रंग के कपड़े पहनती है। जैसे कि पिकॉक के फैदर्स होते हैं, पिकॉक कलर जो कहा जाता है। ये राधा कृष्ण की जो मीटिंग्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करती हैं, और इनकी मदर है शारदी देवी, इनके पिता हैं विशोका, इनके पति हैं भैरव, और भैरव जो है चंद्रावली के जो हस्बैंड हैं गोवर्धन मल, उनके प्रिय मित्र हैं। ललिता सखी आविर्भाव दिवस महामहोत्सव की, हरे कृष्ण श्री गोपाल की जय।